તારીખ 16/11/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 500 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મુંબઈમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર
136 देश ज्ञान के विषय में चल रही है कि मनुष्य जीव को अगर वैराग्य उपशम नहीं होता है और उपशम उपदेश ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तो सिद्धांत के विषय में उनको संभव या पदार्थ का स्वरूप विचित्र है, जीव और अजीव दोनों पदार्थ का स्वरूप विचित्र है। विचित्र इसलिए है कि जीव का मूल स्वरूप सिद्ध परमात्मा जैसा शुद्ध है, जबकि इनके अवस्था में अनादि से मलिन भाव अशुद्ध भाव संसार के परिणाम चल रहे हैं। ये वस्तु विचित्र है, ऐसे अनेक प्रकार के विरुद्ध धर्म दोनों पदार्थ में है, पर विरुद्ध धर्म को वो पदार्थ धारण करता है तो उस धर्म को जो सिद्धांत प्रतिपादन करता है उस सिद्धांत समझने के लिए उपदेश ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। और यह शंका चित्त का असमाधिपना करता है, ऐसा बहुभाग कोई अत्यंत उज्ज्वल शोक संशय और सदगुरु के वचन की आराधना से उद्भव होता है। कितनी अच्छी बात लिखी है, सिद्धांत ज्ञान किसको उद्भव होता है या स्थान पामता है, उद्भव होता है माने स्थान पामता है किसको, कि अत्यंत उज्ज्वल क्षयोग समझे मैंने विशुद्ध क्षयोग समझे माने निर्मल क्षयोग समझे। मते ज्ञान में निर्मलता होती है तो सिद्धांत ज्ञान पचता है या स्थान पामता है, और सदगुरु के वचन की आराधना से और ज्ञानी पुरुष के वचन का अमलीकरण करने वाला होता है, ज्ञानी पुरुष के वचन को आचरण में रखने वाला होता है, उसी को सिद्धांत ज्ञान उद्भव हो सकता है। ऐसी योग्यता चाहिए सिद्धांत ज्ञान के लिए, ऐसी योग्यता अवश्य चाहिए। स्थान प्राप्त करने का कारण उपदेश ज्ञान है, कारण नहीं हो और कार्य की उत्पत्ति हो जाए ये बात बनने वाली नहीं है। तो जीव को क्या करना चाहिए, सदगुरु से या सत्शास्त्र से प्रथम जीव में यह ज्ञान दृढ़ होना चाहिए कि जो उपदेश ज्ञान का फल वैराग्य और उपशम है, कि सदगुरु से श्रवण करे या शास्त्र को पढ़े तो उपदेश ज्ञान इतना दृढ़ हो जाए कि जिसके फल में जीव को वैराग्य और उपशम की प्राप्ति होए। अगर उपशम के विषय में लिखा ऐसा बने तब तो वो सिद्धांत ज्ञान के लायक होता है। वैराग्य और उपशम का बल बढ़ने से जीव को जीव में सहज ही क्षयोपशम का निर्मलपना होता है। उज्ज्वलपना कहो या निर्मलपना कहो, निर्मलता जरूरी है। सिद्धांत तो सिद्धांत है, लेकिन वो सिद्धांत का अर्थ करना, वो सिद्धांत पर से कंक्लूजन पर आना, सारांश पर आना, ये निर्मलता के कारण से यथार्थ रूप से होता है। और निर्मलता नहीं होती है तो वो यथार्थ रूप से नहीं होता है, अयथार्थ रूप से होता है, ऐसा बनता है। क्षोभम की निर्मलता दर्शन मोह और कषाय रस दोनों के कम होने से होती है। क्षोभम की निर्मलता किसको आती है? दर्शन मोह कम होवे और कषाय रस मंद होवे, कषाय नहीं कषाय रस मंद होवे तो निर्मलता आती है। वरना ज्ञान है वो मलिनता से रंजायमान होता है, राग रस से रंजायमान होता है, तो उसकी सूझ बराबर नहीं होती है। वो सिद्धांत को अर्थघटन करने में या उपयोग करने में टेढ़ा चला जाएगा। जैसे कपड़ा कपड़ा है और कैची कैची है, चलाना आए तो सीधी चलेगी, नहीं चलाना आए तो कपड़ा को क्रास में चल। नुकसान कर दिया। वैराग्य और उपशम का बल बढ़ने से, तो वैराग्य और उपशम से क्या होता है कि दर्शन वो मंद होता है और कषाय रस मंद होता है, दो बात बढ़ती है तो निर्मलता आती है। दर्शन वो में अपनत्व का मंद होना, प्रतिबंध का ढीलापना होना और कर्तृत्व का मंदपना होना, भोक्तृत्व का मंदपना होना और सरलता होना, वक्रता हटके जीत के परिणाम कम हो जाने, ये सब होना
चाहिए।
हाँ, सुख बुद्धि आधार बुद्धि ये इसका मंद हो जाना, ये दर्शन को मंद का मंदता का सूचक परिणाम है। परिणाम जो है वो दर्शन के मंदता को बताता है। हाँ वो भी है, का जो विपर्यास है वो सब ढीला ढीले हो जाने चाहिए, वो उसमें आता है। तो अभिप्राय है वो ज्ञान की प्रधानता में जाता है। प्रश्न चला था दर्शन मोह का। हाँ, स्वच्छंद कम होता है और पूर्वग्रह का कदाग्रह, पूर्वाग्रह, मताग्रह, ये सब वक्रता के परिणाम है, आग्रह के
है।
हाँ, प्रमाद तो वैसे चारित्र में ज्यादा जाता है, ये दर्शन मोह में जाता है। ये भी हो जाएगा, और प्रयोजन की पकड़ नहीं रहेगी तब तो मति टेढ़ी चलती है। प्रयोजन की पकड़ हो तो मति सीधी चलती है, वो तो है ही। ज्ञान प्रधान है, वैराग्य और उपशम का बल कम होने से जीव में सहज ही शोषण का निर्मल बना होता है। और एक दृष्टांत देने ये जो मार्गानुसारी जीव होते हैं, कृपालु देव उनके प्रति क्यों बहुमान रखते हैं मार्गानुसारी के प्रति, तो उसका दर्शन वो कम हुआ है अन्य मत में ईश्वर कर्तृत्ववादी पड़ा है और वो सिद्धांत विरुद्धता है, ज्ञान विरुद्धता है, श्रद्धा विरुद्धता भी है, फिर भी दर्शन वो कम पड़ा है तो उसको सिद्धांत बराबर बैठता है, उसको जो जिन सिद्धांत है वैसा ही अंदर से उठता है। तो ये जीव की बहुत विचित्र परिस्थिति है, नाप निकालना बहुत मुश्किल पड़े। और सामान्य मुमुक्षु है कि मार्गानुसारी बहुत आगे है, ज्ञानी तो उनका भी नहीं करते। हाँ, पात्रता विशेष है। सिद्धांत ज्ञान होने का कारण बनता है इस जीव को, सहज मात्र में सिद्धांत ज्ञान को की पकड़ आ जाती है कि सिद्धांत बराबर है, वरना सिद्धांत ज्ञान है वो तो थोड़ा कठिन विषय है, सूक्ष्म विषय है, उपदेश ज्ञान जितना स्थूल विषय नहीं है। यदि जीव में असर्ग दशा आए तो आत्मस्वरूप समझने का एकदम सुलभ होता है और यह असंग दशा का हेतु वैराग्य और उपशम है। यदि जीव में असंग दशा आए तो, असंग दशा मैंने यहाँ पत्र लुजित को लिखा है, तो उनको समाज के लोगों की पंचायत में टाइम देने का उसके पास अवकाश नहीं है। ऐसे अखबार पढ़ लेगा, दिन में आधा घंटा अखबार पढ़ लेगा, टीवी देख लेगा, वो अलग बात है, वो भी पंचायत है। लेकिन जो साधु बनते हैं, दीक्षित हैं, सब एक से नहीं होते, बहुभाग है, समाज के साथ बहुत संपर्क रखते हैं, समाज संग बढ़ा देते हैं और ये इसका एक अपने आप खड़ा कर देते हैं। क्योंकि ये बात है कि आप तो असंग दशा का हेतु वैराग्य और उपशम है। यदि जीव में असंग दशा आए तो आत्मस्वरूप समझना सुलभ होता है और यह असंग दशा का हेतु वैराग्य और देखिए जो साधु दीक्षा लेते हैं उनको वैराग्य उपशम नहीं है क्या? उसने तो अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने व्यवसाय का भी त्याग कर दिया, गर्म पानी पीते हैं, नंगे पैर चलते हैं,
ज्ञान गर्भित नहीं है, ज्ञान गर्भित
नहीं, उनका वैराग्य क्या कि लोगों का संग नहीं रखे, वो उनका वैराग्य है, वह इसका उपशम है, इनका वैराग्य है। छठे सातवें गुण स्थान तो है नहीं, दीक्षा लिया फिर भी तो है, तो जिज्ञासु की भूमिका में, मुमुक्षु की भूमिका में, और बाहर में तो त्याग है, तो बाहर में त्याग है इसलिए वैराग्य उपशम है कि नहीं, ज्ञानी मानेंगे ऐसा, बाह्य त्याग को वैराग्य उपशम नहीं मानते हैं, बहुत पंचायत करते हैं, फुर्सत ज्यादा है ना, और उपयोग तो अंदर में जाता नहीं, तो बाहर तो काम करेगा ही करेगा ना, उपयोग है वो फालतू तो नवरा बैठता नहीं। तो प्रसंग छोड़ना चाहिए उनको, तो अपने आत्मा में, सत्शास्त्र में, सत्संग में और ज्ञान ध्यान में, संयम में, उसमें उपयोग लगाना चाहिए। जो बार बार जिनागम में तथा वेदांत आदि बहुत शास्त्र में कहा है, विस्तार से कहा है, ऐसी बात जिनागम में भी कही है उपदेश की, वेदांत में भी कही है, वहां भी इनके भी ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, वो लोग उस जमाने में बस्ती में नहीं ठहरते थे, आजकल तो ठहरते हैं दोनों संप्रदाय में, लेकिन उन जमाने में उनके साधु लोग भी जंगल में बसते थे। इसलिए निसंशय रूप से योग वाशिष्ठ आदि वैराग उपशम का हेतु वैसे सदग्रंथ विचारने योग्य है। तो किसको कहते हैं? ललूनी स्वामी को कहते हैं, जिसको दीक्षा लिया है। क्या वैराग के ग्रंथ को पढ़ो, ये योग वाशिष्ठ वैराग्य का ग्रंथ है, उसको पढ़ो आप। साधु का वेश में वो उपदेश देते हैं इस प्रकार का, आपको वैराग्य और होना चाहिए, हमको आपका वैराग्य दिखता नहीं है, ये बात है उसमें। क्यों रस लेते हो? जब हमने हमारे कुटुंब परिवार का त्याग किया, फिर दूसरे के कुटुंब परिवार में हम तो क्यों रस लें? क्या जरूरत है? ये तो अनर्थ दंड हो गया, तो फिर घर घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? काफी चलता है ना, बहुत माथा लगाते हैं, आप ऐसा करो वैसा करो, इधर करो उधर करो, ये ट्रस्टियों की मीटिंग होती है उसमें भी रस लेते हैं, सब हमने देखा है थोड़ा बहुत, चिट्ठी लिखवा देते हैं कि आपको मीटिंग में जाना है, उपस्थित रहना है, बहुमत उन लोगों का वो नहीं हो जाए वो ध्यान में रखना है, ऐसे ऐसे ठहराव प्रसार करना है, वो करो वैसा करो वैसा करो, तब कोई ट्रस्ट के वहीवट में, कोई कुटुंबियों में, कोई सगाई संबंध में, कोई वैसे वैसे रस लेने लग जाते हैं, ये तो बहुत नुकसान का कारण होता है। उसका उपयोग तो आत्मा में लगेगा, एक दुकान बंद किया दूसरा दुकान चालू किया, एक संसार छोड़ा दूसरा संसार चालू हो गया। हमारे पास आने में कोई कोई प्रकार से आपके साथ परिचय जो है, आपके साथ वाले परिचय श्री देवकरण जी का मन अटकने का था, और ऐसा अटकना होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे में शंका सहज उत्पन्न होवे, ऐसा व्यवहार प्रारब्धवशात हमको उदय में वर्तता है। क्या है कि गृहस्थ लोग तो साधु के पास जाते हैं, लेकिन साधु गृहस्थ के पास जाए वो बात तो दिखावा अच्छा नहीं होता है। गृहस्थ लोग साधु को ऐसा बोलेंगे, आप वहां क्यों जाते हैं? आपने तो त्याग किया है, उसने तो कुछ त्याग नहीं किया, वो तो दुकान पर जाकर बैठते हैं, धंधा व्यापार करते हैं, और घर में बाल बच्चे हैं, और आपने तो सब छोड़ दिया है, तो वो आपके पास आए वो तो बराबर है, लेकिन आप इनके पास क्यों जाते हैं? वो साधु को गृहस्थी लोग टोकेगा, टकोर करेगा या प्रतिबंध भी करेगा कि आपको नहीं जाना चाहिए, इसमें आपकी शोभा नहीं है, और आपकी शोभा नहीं है तो हमारे संप्रदाय की भी शोभा नहीं है, ये बात हो जाएगी। दीक्षा लेकर के एक नया प्रतिबंध को खड़ा करने की बात हो जाती है, समाज का प्रतिबंध आता है। इसलिए कहते हैं हमारे पास आने में आपके साथ वाले जो साधु है देवकरण जी, उनको संकोच होता था। ये संकोच होना स्वाभाविक भी है, वो संकोच होना अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि हमारे में शंका उत्पन्न हो जाए ऐसा हमारा व्यवहार है, हमारा प्रारब्ध ऐसा है कि हम कुटुंब में व्यवसाय में फंसे हैं, क्योंकि कि बात तो करते हैं वितरागता की और आचरण में तो दूसरी बात है। जैसे विचार है ऐसा वर्तन तो है ही नहीं, बात तो विचार तो वितरागता के रखते हैं, अच्छे अच्छे विचार बताते हैं, लेकिन आचरण में तो कुछ है ही नहीं। वो तो दुकान पर जाके टाइम पर बैठ जाते हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं, तो उनको तो दो बात में विरुद्धता दिखेगी तो शंका पड़ेगी कि बात करते हैं कुछ और चलते हैं कुछ और साधक को हमेशा ऐसा ही होता है। कोई भी भूमिका का साधक हो या मुमुक्षु हो, उनके विचार उनके आदर्श बहुत ऊंचे होंगे, लेकिन वहां तक उसकी पहुंच नहीं होगी। जो सच्चा होगा मुमुक्षु या साधक, तो उसका पुरुषार्थ करेगा, प्रयत्नवान होगा, उद्यमवंत होगा, अपने आदर्श को प्राप्त करने के लिए उसका पुरुषार्थ होगा, इतनी योग्यता होगी उतना, लेकिन उसकी पहुंच नहीं होगी, तब तो वो साधक है। साध्य के प्रति चलने वाले को साधक कहते हैं। क्या? जो साध्य के प्रति चलता है उसको कहते हैं साधक। तो जो पहुंचा नहीं है लेकिन पहुंचने के लिए गति कर रहा है, गमन कर रहा है, उसको कहते हैं साधक। तो उसके विचार तो ऊंचे होंगे पर उसका वर्तन उतना ऊंचा नहीं होगा। मुमुक्षुओं को भी ऐसी परिस्थिति होती है, उनके उनका ध्येय तो होता है पूर्ण निर्दोषता का, और दोष तो होते हैं। अभी तो सम्यक निर्दोषता तो शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन मुमुक्षुता शुरू होती है तो कुछ दर्शन वो दत्ता है, दर्शन वो करता है, कम होता है, उतना गुण तो हुआ है, लेकिन और दोष तो होते ही है। दूसरे दूसरे प्रकृति आदि के प्रतिबंध आदि के कुछ न कुछ प्रकार के दोष तो होते ही हैं। अब सीधी नजर से नहीं देखे तो उनको अखरेगा दूसरे को, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों, क्या वो मायाचार करता है, ऐसा लगेगा कि बोलता है कुछ और चलता है कुछ, ऐसा नहीं है, ऐसा ही होगा। विचार में और वर्तन में हमेशा अंतर रहेगा ही रहेगा, किसी का नाम साधक है। और ये बाह्य दृष्टि वाले को शंका का कारण हो जाता है, तो उसको शंका की नजर से देखता है।
प्रकृति में भी उतार चढ़ाव होता है, प्रकृति में भी उतार चढ़ाव होता
रहता है। हाँ, होता रहता है, परिणाम में तो उतार चढ़ाव आएगा ही आएगा, सामान्य तौर से, विशेष की बात कुछ और। हमको किस दृष्टि से देखना है या हमको कहाँ खड़ा रह करके देखना है, ये मुद्दे की बात है। जब हमारा जजमेंट राइट निकलेगा, अगर वरना हमारा जजमेंट है वो रॉन्ग चला जाएगा, ये बात होगी। पर उसका नुकसान हमको होगा, उसका नुकसान सामने वाले को नहीं होगा। उसमें हमको गुण देखना चाहिए, गुण की मुख्यता में खड़ा रह करके देखना चाहिए। दोष दृष्टि तो हमारी अनादि से है ही, परम दोष को मुख्य करते हैं। अगले में दोनों बात है, गुण भी है और दोष भी है। हमको गुण देखना है कि दोष देखना है, किसको मुख्य करके देखना है? दिखेगा दोनों, ज्ञान है उसमें तो दोनों बात दिखने में आएगी, दोष दोष रूप में दिखेगा, गुण गुण रूप में दिखेगा। तो मुख्यता किसको देनी है? देखना भी जानना भी ज्ञान का धर्म है, पर मुख्य गुण करना वही भी ज्ञान का धर्म है। और दो में से एक को मुख्य करेगा, दूसरे को गौण करेगा। दोनों को मुख्य नहीं करेगा, दोनों को गौण भी नहीं कर सकता। एक मुख्य होगा, एक गौण होगा। अपना लाभ के कारण से हमें गुण को मुख्य करना है, दोष को मुख्य करना नहीं चाहिए। यहाँ खड़ा रहना है।
अकेले गुण नहीं देखना,
दोष
नहीं देखना, सब कुछ
पूरी बात बताओ तो पता चलेगा।
मुख्य करने का जो विषय है, मुख्य गुण करने का जो विषय वो भी ज्ञान का ही है।
हाँ, और जानने का विषय भी ज्ञान का भी है।
दोनों दिखता है, लेकिन किसको मुख्य करना किसको गुण करना ये ज्ञान का सुख
है। वो ज्ञान का धर्म है, तो उसमें विवेक करना है हमारी भलाई के लिए कि हमें को उनको गुण मुख्य करना है, दोष मुख्य नहीं करना है। किसका? सामने वाले का। और अपने में दोष को मुख्य करना है और गुण को कम करना है। हमारे में गुण दोष है तो हमारे दोष को मुख्य करना है हमको, और हमारे गुण को दबाना है, छिपाना है। और सामने वाले का दोष को गौण करना है और उसका थोड़ा भी गुण हो इसको मुख्य करना है। ये नीति है, ये सही नीति है, सही ये बात। मतलब
गुण देखने का जो बात की भूमिका में कौन सा गुण प्रकट होता है जो देखने में?
एक तो सरलता, मध्यस्थता, विशालता, जितेंद्रियता और विवेक और आत्मकल्याण की सूझ, दर्शन मोह की मंदता, कषाय रस की मंदता, प्रतिबंध का ढीलापना, ऐसे बहुत से प्रकार के गुण।
सामने वाले को कौन से गुण प्रकट देखने में आते हैं?
वही तो कहते हैं कि सामने वाले में ऐसे
प्रतिबंध ढीलावाणी हो, हम लोगों को देखने में नहीं आएगा।
क्यों नहीं?
क्योंकि उसका अभिप्राय उससे उसका लेना देना है।
हमको क्यों दिखने में नहीं आएगा? अगले का गुण हमको दिखने में आएगा, हमारी नजर गुण पर होगी। तो
उसमें जो दर्शन मुख का अनुभव का जो प्रहार करने का जो उसका जो प्रकार है वही हम लोग देख सकते हैं। जैसे सत्संग के प्रति उसका जो पकड़ है, उसका जो
भी है प्रयोजन की पकड़ दिखने में आएगी, जो भी गुण है सब
गुण तो व्यक्त नहीं होते, देखने में नहीं आ सकते। दूसरों के नजर में सब गुण नहीं आ सकते, स्थूल आ सकते हैं।
कुछ आते हैं जिसके जिसकी जितनी योग्यता, जिसके जितनी योग्यता और जिसका जितना परिचय। ये बात तो परिचय से ज्यादा समझना है।
मेन यहाँ पे चारित्र से रिलेटेड गुण दोष नहीं देखने का, दर्शन से रिलेटेड गुण को देखने का।
हाँ वो तो है ही,
मुमुक्षुता
में तो वही बात है, क्योंकि चारित्र मोह के तो बहुत से अवगुण होंगे। जो दर्शन मोह के रिलेटेड है वो बात को मुख्य रूप से देखना है, चारित्र मोह से रिलेटेड है वो बात को मुख्यता नहीं लेना है। वो बात को
जित आदि के परिणाम तो दर्शन मोह,
हाँ वो दर्शन मोह में जाता है। और सरलता
दृष्टा
और अकृता और सरलता ये दर्शन मुख के रिलेटेड है। और मध्यस्थता नहीं होना, वो जो पहले लिया ना सब दर्शन मुख वाले लिए थे, मध्यस्थता सरलता विशालता ये सब जितेंद्रियता चारित्र मुख में जाता है, लेकिन इसका आसक्ति का रस है वो दर्शन मुख के साथ संबंध रखता है। तो ये सब बातें सत्संग से समझ में आती है, परिचय में ख्याल ज्यादा पड़ता है, परिचय से ज्यादा ख्याल आता है। तो खास करके अपनी नजर साफ होती है तो ज्यादा ख्याल आता है। अगर अपनी नजर मैली है तो मेलापन दिखेगा, बालों से भी तो पीलिया होता है, उसको सब पीला दिखता है, कलर ग्लास लगाएंगे तो सब कलर दिखेगा, करंट भी आ सकता तो साफ दिखेगा। बस सीधी बात
है ना, तो सीधी बात भी उल्टी नजर आती
है। वो तो है, वो तो है।
सबसे मोटा दोष जो है ना पूर्वाग्रह वाला, तो है सबसे मोटा।
पूर्वाग्रह वाला दोष हो या मध्यस्थता का अभाव को हो, एक ही बात होगी, बात तो एक ही होगी।
मतलब सारे दोष को उत्पन्न करने वाला यही एक
मध्यस्थता नहीं होती है। देखिए मुमुक्षु जीव को अपने आप में एक निश्चय, एक निर्धार सैद्धांतिक तौर से कर लेना चाहिए कि कोई भी बात मेरे सामने आए विदाउट प्रेजुडाइस विचार करने की, मेरा हमेशा हमेशा दृष्टिकोण रहना चाहिए, होना चाहिए, जब मैं सही बात समझने के लायक रहूंगा कोई भी बात मेरे सामने आ जाए, इसमें कोई